मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 20 दिसंबर 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मित्रों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं सविता जो बाबूगढ़ कैंट जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश से हैं और ओम प्रकाश सिंह जो विक्रमगंज जिला रोहतास बिहार से हैं। तो सविता और ओम प्रकाश आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज के मुख्य विषय के तहत हम लोग न्यू इंडिया 75 के लिए रणनीति इस विषय पर बात करेंगे और इसके बारे में अब हम आगे ही चर्चा करेंगे क्योंकि आज जो दूसरी खबरें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो शायद ज्यादा वक्त इसी में लग जाएगा लेकिन यहां मैं आपके जानकारी के लिए केवल ये बता दूं कि कल नीति आयोग ने अपना एक रणनीति प्रपत्र जारी किया है। रणनीति प्रपत्र कहने का मतलब है कि भारत को आजादी के 75 साल पूरे होने पर कैसा होना चाहिए, जिसे आप कह सकते हैं नए भारत के लिए रणनीति। इस पर आज अखबारों में काफी कुछ छपा है, उस पर देखता हूं मैं कि कितना वक्त बचता है कि हम लोग बात कर सके। अदरवाइज अगर थोड़ी भी बात हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज अखबारों में काफी कुछ दिया है, आप सब उसे देखेंगे और जरूरत पड़ने पर मैं फिर से उस विषय पर बात करूंगा। लेकिन आइए जो दूसरी इंपॉर्टेंट खबरें हैं थोड़ा सा उन्हें देख लेते हैं। फ्रेंड्स एक आपने न्यूज सुनी कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, राज्यपाल शासन की जगह राष्ट्रपति शासन, इस तरह की खबर थी। तो बहुत से स्टूडेंट जो अभी संविधान की नई नई तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के तहत, तो उनको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये राज्यपाल शासन क्या हुआ और राष्ट्रपति शासन क्या हुआ, क्योंकि भारत के दूसरे राज्यों में तो कभी राज्यपाल शासन उस तरीके से लागू नहीं होता है। तो ये कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूं और प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए हमारा देश संघ है, संघात्मक स्वरूप वाला है, एक केंद्र सरकार है दूसरी राज्य सरकारें हैं, ठीक है। जो राज्य सरकारें हैं बाकी सभी एक जैसी हैं, लेकिन आप सबको मालूम है कि जम्मू और कश्मीर को उस समय की विशेष परिस्थितियों के कारण एक अलग दर्जा दिया गया है, यानी कि हमारे जो अन्य राज्य हैं उनकी तुलना में जम्मू कश्मीर की स्थिति थोड़ी सी विशिष्ट है और उसके लिए बकायदे संविधान में अनुच्छेद 370 की व्यवस्था भी की गई है। और आपने पढ़ा होगा कि कभी कभी अनुच्छेद 370 को लेकर के एक विवाद की स्थिति भी होती है, विवाद की नहीं मतलब विचार विमर्श की स्थिति होती है कि इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारे देश में केवल जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जिसके पास अपना भी संविधान है। अदरवाइज देखिए कि हमारे किसी भी राज्य के पास अपना संविधान नहीं, उनके अपने एक्ट हो सकते हैं, वो अपने विषय पर कानून बनाते हैं लेकिन संविधान नहीं है। जम्मू कश्मीर के पास अपना संविधान है, उस संविधान की एक धारा है 92, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि प्री में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके तहत ये प्रोविजन किया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से वहां 6 माह के लिए राज्यपाल शासन लगा सकता है, मतलब जब ये लगे कि यहां आप कोई भी पार्टी शासन बनाने की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो वहां राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। तो शुरू के तो 6 महीने का जो काल होता है ऐसा वो राज्यपाल का काल कहलाता है, राज्यपाल शासन कहलाता है, लेकिन बाद में अगर राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी भी बात नहीं बन रही है, सरकार बनने की स्थिति नहीं है, तो फिर से वो 6 महीने के पीरियड को जब बढ़ाएंगे तो अब वो राज्यपाल शासन न कहला करके वो राष्ट्रपति शासन कहलाएगा 6 माह के लिए, और इस तरीके से वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। मतलब ये कह लीजिए कि जो राज्यपाल शासन है वो कन्वर्ट हो जाता है राष्ट्रपति शासन में और इसके बाद फिर संसद की स्वीकृति ली जानी जरूरी होती है। तो वही स्थिति है कि 6 महीने पहले वहां राज्यपाल शासन लागू किया गया था जब भारतीय जनता पार्टी ने वहां की जो शासक पार्टी थी उसके साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, लेकिन अपना विड्रा कर लिया कुछ मतभेद होने के कारण, तो वहां सरकार गिर गई थी। फिर कोई नई सरकार बनने की स्थिति नहीं आई, तो वहां राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया और अब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। तो ये जो धाराएं हैं आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। दोस्तों, जो दूसरी खबर है, एक महत्वपूर्ण खबर है और न्यूज में आपने सुना है कि इसरो ने GSAT-7A नामक उपग्रह छोड़ा है। GSAT-7A ये नाम आपके दिमाग में स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि यदि इनमें कंफ्यूजन हुआ तो आप समझ लीजिए कि मुश्किल हो जाएगी। इसे एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह सैन्य उपग्रह है। सैन्य उपग्रह कहने का मतलब है कि इसकी जो सबसे बड़ी उपयोगिता है वो वायुसेना के क्षेत्र में होगी। हालांकि इसका जो टोटल उपयोग होगा वो संचार सेवाओं को स्ट्रेंदन करेगा हमारे यहां की, लेकिन सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा वो वायु सेना को मिलेगा। और इसकी जो विशिष्टता है वो ये है कि एयरफोर्स के जो विमान होंगे वो हवा में ही एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर लेंगे, हवा में ही रहते हुए एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर लेंगे। और जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन आप जानते हैं, तो ड्रोन भी इस सैटेलाइट से लिंक होंगे। तो ड्रोन में आप कैमरा लगा देंगे तो कैमरे से फोटो आ जाएगी, फिर सैटेलाइट के माध्यम से वो फोटो पृथ्वी पर भेज दी जाएगी। तो ये एक प्रकार से वायुसेना को बहुत अधिक शक्ति प्रदान करेगा। और इसी सैटेलाइट के जरिए जो बहुत लंबी लंबी दूरी पर अगर कोई वायु कोई विमान आ रहा है, एयरक्राफ्ट है या कोई पोत है, पनडुब्बी है, तो उनका भी पता लगाया जा सकेगा। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसरो को लगातार इस क्षेत्र में बहुत जबरदस्त कामयाबी मिलती जा रही है। फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण खबर है, और वो महत्वपूर्ण खबर ये है कि कल सरोगेसी रेगुलेशन बिल लोकसभा में पारित हो गया है। सरोगेसी रेगुलेशन बिल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। सरोगेसी मदर को आप कम अर्थ आप जानते हैं कि मान लीजिए कि एक दंपत्ति है, उनके बच्चा नहीं हो रहा है, तो दूसरे माँ किसी माँ की कोख उधार में ले लेते हैं आप कह लीजिए, और फिर वहां वो बच्चा पलता बढ़ता है, वहां भ्रूण स्थापित कर दिया जाता है, और जब बच्चा हो जाता है तो बच्चा उस दंपत्ति को दे दिया जाता है। तो कोख को किराए पर लेना, कुछ लोग इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो भारत में इसने एक तरह से कमर्शियल रूप ले लिया था, और विदेश के बहुत से लोग फिर इस तरह से कोख उधार लेने लगे थे। और इसको लेकर के एक प्रकार से कुछ लोग इसे अमानवीय भी मानने लगे थे, और इसके दुनिया भर की इसको लेकर के शिकायतें भी आने लगी थी कि किस तरह से इसका मिसयूज हो रहा है, बच्चों की अनदेखी हो रही है, माताओं का भी शोषण होता है। तो इसको रोकने के लिए, यानी कि ये कह लीजिए कमर्शियल सरोगेसी को रोकने के लिए ये बिल पारित हुआ है। इस बिल में 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मालूम होने चाहिए। पहला तो यह है कि यह केवल उन्हीं के लिए सुलभ होगा जिन्हें दिन दंपतियों को संतान नहीं हो रही है, यानी कि निःसंतान दंपतियों के लिए ही सुलभ होगा। दूसरा यह है कि इसमें जो विदेशी हैं उनको इसके लिए अनुमति नहीं होगी, लेकिन जो NRI है यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो उनके पास भारतीय नागरिकता भी है लेकिन वो विदेशों में रह रहे हैं, अगर वो निःसंतान हैं तो वे इस तरह का लाभ ले सकेंगे। तो इस बिल के बारे में अभी और डेफिनेटली लेख आएंगे, आर्टिकल्स भी आएंगे, तब हम लोग और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है जो आपको मालूम होना चाहिए, प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। मित्रों, कल न्यूज में आपने JPC का नाम सुना होगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, लगातार आप इसके बारे में सुन रहे हैं। मैं इस पर विस्तार से चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं, बस केवल ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इसके बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं तो आपको बकायदे JPC के बारे में किताब से पढ़ लेना चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इससे पहले मैंने इस पर चर्चा की है। एक सूचना आपको दे दूं कि आज करंट कंटेंट के अंतर्गत टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा था हमारे KJ अल्फांस जी का, जो हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं और जो IAS ऑफिसर रहे हैं। उस लेख का शीर्षक था भारत में पर्यटन में लगते 4 चांद। ये बहुत खूबसूरत आर्टिकल है और पर्यटन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस लेख को जरूर पढ़ें। यह करंट कंटेंट में आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। मित्रों आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं, और मुख्य विषय है कि जो नीति आयोग है उसने नए भारत के लिए किस तरह की रणनीति बनाई है। इस पर भी आप देखेंगे कि अभी काफी बहस होगी, विचार विमर्श होगा। आपको मालूम है कि हमारा पंचवर्षीय पहले जो योजना आयोग था वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, उसकी जगह नीति आयोग आ गया है। नीति NITI का जो फुल फॉर्म है आप जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम कहते हैं नीति, नीति आयोग, इसके उपाध्यक्ष होते हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं वो बिल्कुल यू कह लीजिए कि प्लानिंग कमीशन की तरह ही प्रधानमंत्री होते हैं। इन्होंने अभी एक दस्तावेज जारी किया है जिसका नाम है स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, यानी कि आजादी के 75 वर्ष तक भारत किस तरीके का होगा उस पर बनाई गई रणनीति। तो एक तरह से कह लीजिए कि एक नीतिगत ढांचा उन्होंने प्रोवाइड किया है। देखिए इसमें इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बातें कही हैं वो विस्तार से बहुत बातें हैं और बहुत अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग बातें उन्होंने कही हैं, और मैं समझता हूं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी है, क्योंकि जब भी इससे रिलेटेड कोई टॉपिक पूछता है तो आप नीति आयोग के विचार को उसमें मेंशन कर सकते हैं संदर्भ के रूप में। इनमें जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं तीन चार, केवल उन्हें ही मैं आपके सामने रख पाऊंगा। पहला तो यह है कि जो हमारा निवेश है अभी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब आप जानते हैं, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट के अंतर को आप समझते हैं, वो अभी जो हमारा टोटल GDP होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 29% होता है। बाकी चीजें बाकी मतलब एक रुपया अगर हम कमाते हैं तो आप कह लीजिए कि उसका 29 पैसा हम निवेश कर देते हैं और बाकी पैसा फिर चला जाता है दूसरे कामों में। तो उन्होंने ये कहा है कि उसे 2022-23 तक 36% करना है, यानी 29 पैसे के निवेश को बढ़ाकर हमें 36 पैसे करना है। देखिए निवेश से होता क्या, निवेश से आय होती, आमदनी होती है। ये ठीक वैसे ही जैसे आप अपने चलाने के लिए कार खरीद रहे हैं तो ये खर्चा हो गया, लेकिन अगर आप टैक्सी के लिए कार खरीद रहे हैं तो वो कमाई हो गई, उससे आप कमाई करेंगे। तो उन्होंने बढ़ा करके कहा 29 को बढ़ा करके 36, और उसके पीछे रीजन ये है कि हमारी जो विकास दर है अभी एनुअल, उसको भी 8% करना है, और 8% तब तक नहीं होगा जब तक हम अपना निवेश नहीं बढ़ाएंगे। और आपको ध्यान होगा कि कल मैंने डॉक्टर भरत झुनझुनवाला जी के लेख के माध्यम से जो आपको निवेश के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने पॉइंट्स बताए कि यहां से पैसा निकाला जा सकता है और निवेश किया जा सकता है, और अभी जो हमारी वर्तमान विकास दर है इस विकास दर से लोग खुश नहीं है, क्योंकि हम रोजगार प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, अपने लोगों की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि हमें अपने विकास दर को बढ़ाना होगा। तो लगभग अभी 7% के आसपास है, तो नीति आयोग का कहना है कि उसे 8% करना पड़ेगा, और ये केवल 22-23 तक की ही बात कही है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम निवेश बढ़ाएं। दूसरी बात उन्होंने कही है, नेक्स्ट पॉइंट है कह लीजिए, कि जो हमारा निर्यात है उस निर्यात में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करनी होगी, क्योंकि देखिए जब हम निर्यात करते हैं तो निर्यात तभी संभव है जब हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो या हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़े, चाहे वो लघु उद्योग के माध्यम से हो, मध्यम उद्योग के माध्यम से हो, बृहद उद्योगों के माध्यम से हो, या सभी को मिला करके हो। तो वो हमारा जो अभी निर्यात है वो है 2.7 लाख करोड़ डॉलर, जिसे बढ़ा करके उन्होंने कहा है कि 22-23 तक ये 4 लाख करोड़ डॉलर हो जाना चाहिए। ठीक इसी तरह से उन्होंने कहा है कि जो गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं उनमें भी लगभग हमें दुगुनी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, 478 अरब डॉलर से बढ़ा करके उसे 800 अरब डॉलर तक करना होगा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि जो मुद्रा स्फीति की जो हमारी दर है, इन्फ्लेशन, जिसे आप हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं महंगाई, उसको भी किसी भी हालत में 6% से अधिक नहीं जाने देना है। उसकी जो रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2% to 6%, बस इसी के बीच में मुद्रा स्फीति नियंत्रित रहनी चाहिए। तो ये इन्होंने चार पांच महत्वपूर्ण बातें कही हैं और इस पर अभी आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ने को और मिलेगा। बस मेरा सजेशन इतना ही है कि जब भी आपको नीति आयोग के इस रणनीतिक दस्तावेज के बारे में कुछ पढ़ने को मिलता है एडिटोरियल कमेंट या आर्टिकल फॉर्म में, तो प्लीज आप उसे ध्यान से पढ़ें और उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप नोट कर लें। और अगर कुछ विशेष बात मेरी दृष्टि में आएगी तो डेफिनेटली फिर मैं मुख्य विषय के तहत या अन्य न्यूज के तहत उनकी चर्चा आपसे करूंगा। तो मित्रों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज पेपर की क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इस बात के लिए मैं अपने ईमेल लिखने वाले मित्रों को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आज मैं मुझे वो काफी नाम लेने का मौका दे रहे हैं, यानी कि जिन लोगों ने ईमेल लिखे हैं उनमें से ज्यादातर जो फ्रेंड्स रहे हैं उनके ईमेल में कुछ ऐसा दम मुझे दिखाई दिया कि मुझे उनका नाम लेने का सौभाग्य यहां मिल रहा है। तो ऐसे कुछ दोस्तों के नाम है, अभय चौहान, परी कृष्णा, अनुपमा शुक्ला, मुकेश भाकेत, स्वाति श्रीवास्तव बलिया उत्तर प्रदेश से, सोनाक्षी झा, रविकांत शुक्ला गोंडा उत्तर प्रदेश से, रीना कुमारी पासवान, सचिन कुमार कश्यप, रवि दयालपुर बिहार से और अफजल खान। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।